आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
कवि साहित्यकार डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, जिन्होंने अपनी कलम से जीवन की अच्छी बुरी खरी खोटी और नैतिक मूल्यों के बीच भावनाओं और अनुभवों को कविता के रूप में प्रस्तुत किया। हिंदी कविता में छायावाद के माध्यम से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा के हाथों जहां खड़ी बोली कोमलता और माधुर्य से भर गई, वहीं दूसरी ओर एक प्रकार से स्वच्छंदतावादी काव्य की रचना हुई और उसे नाम मिला हालावाद का। ये काव्य प्रवृत्ति यूं मूलतः रोमांटिक थी, लेकिन इसमें हृदय की सहज अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर छायावाद से अधिक बल दिया गया। इस काव्य में कहीं निराशा का स्वर भी था, शायद इसीलिए इसके बीच से निकला होगा हिंदी काव्य में प्रगतिवाद। हालावाद के द्वारा कवि हरिवंश राय बच्चन ने जीवन की बुराइयों के बावजूद जीवन में जो कुछ भी मधुर है उसे अपनाने की प्रेरणा दी, और इसका सूत्र थी उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना मधुशाला। मधुशाला, जहां युवा वर्ग ने इसे मौज मस्ती की परिभाषा दी, वहीं साहित्यकारों ने उसके आध्यात्मक रूप को परखा। शराब को जीवन की उपमा देकर बच्चन जी ने कहा, उन्हीं के शब्दों में, जीवन की मदिरा हमें पीनी पड़ी है। कितनी कड़वी है ये मदिरा। उस मदिरा के नशे को ये उतार देगी, जीवन की दुखदायिनी चेतना को विस्मृति के गर्त में गिराएगी और नियति के क्रूर कठोर कुटिल आघातों से रक्षा करेगी। ये थे उन्हीं के लिखे हुए शब्द। आलोचकों की राय में मधुशाला धर्म निरपेक्षता का प्रतीक है। जैसे धर्म की वजह से बढ़ती कटुता पर उन्होंने कहा, मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। बच्चन जी की कविता के सर्वप्रिय होने का कारण उनकी संवेदना से भरपूर जीवंत भाषा और संगीत में ढलकर गाने वाली शैली का है। उन्होंने समाज में व्याप्त विषमता, अभाव और पीड़ा को पूरी ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त किया। उन्होंने बांटने वाली दीवारों को हमेशा अस्वीकार किया। बच्चन जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक यथार्थ से जुड़कर जन सामान्य की टूटती आस्थाओं, मूल्यों के विघटन और हताशा को स्वर देने का प्रयास किया। बच्चन जी के बारे में प्रसिद्ध साहित्यकार कांति कुमार जैन लिखते हैं कि बच्चन भी किसी कवि का नाम होगा ये कल्पना से परे था। हरवंश राय जैसे अच्छे खासे कर्ण प्रिय नाम को हटाकर कोई बच्चन बनना क्यों पसंद करेगा? शायद छायावाद की उत्तत भाषा शैली और भावना से विद्रोह करने का उनका ये अपना तरीका था। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, उन्हीं के शब्दों में, 20वीं सदी के नवजागरण के साथ हिंदी के कवियों ने अपने आप को अजनबी पाया होगा, समाज से अलग करना चाहा होगा। किसी ने नया लेकर, नया रूप बनाकर, बाल बढ़ाकर या फिर नए कपड़े ही पहन लिए होंगे। ये थे बच्चन जी के ही शब्द उनकी आत्मकथा में। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग हरवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। आप जानते ही होंगे कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में युवा काल से ही शामिल हो गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की शिक्षा की और वापस लौटकर आकाशवाणी में प्रोड्यूसर भी रहे, राज्यसभा के सदस्य और उससे पहले विदेश विभाग की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। पद्म भूषण, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोटस पुरस्कार वगैरह उन्हें कई सम्मान मिले। बच्चन जी की रचनाओं में समाज में फैली विषमता, अभाव, पीड़ा के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन की परछाई भी है। पहले यौवन, उल्लास से भरी रचनाएं, मधुबाला और मधुकलश, फिर पीड़ा और विषाद से भरी रचनाएं जब उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, ये सब उसी दौर की रचनाएं हैं। और फिर तेजी बच्चन के आने से रचनाओं में प्रेम सौंदर्य को शब्द मिले और रचना हुई सतरंगनी और मिलन यामिनी जैसी रचनाओं की। बाद में सामाजिक यथार्थ से जुड़कर जनसामान्य के दुख दर्द टूटते सामाजिक मूल्यों को अपने शब्द दिए। साहित्य जीवन में कविताओं में अपनी धाक जमाने के बाद उन्होंने गद्य का रुख भी किया और उनकी चार खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक, ये सारी विश्व में चुनी हुई आत्मकथाओं में से एक है। मधुशाला उन्होंने 1935 में लिखी थी और मधुशाला ने काव्य जगत में न सिर्फ एक नया आयाम स्थापित किया बल्कि यूं कहें कि आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। साहित्य चर्चाओं और गोष्ठियों में मधुशाला की पंक्तियां गुनगुनाते पढ़ते पढ़ाते पता नहीं कितनी बार लोग दिखाई देते हैं। और यही नहीं, उनके पुत्र अमिताभ बच्चन अपने बाबूजी की मधुशाला को दोहराकर तालियां भी बटोरते रहते हैं। उनकी मधुशाला में हर एक पंक्ति आदि से अंत तक गति में चमकती हुई आकर्षक और समग्र है। सीधी सादी भाषा में लिखी उनकी हर रचना पढ़ने सुनने वाले के मन की बात लगती है। बच्चन जी की खास बात थी कि वो हिंदी को विशुद्ध अलंकारित भाषा बनाने के पीछे नहीं थे बल्कि वो चाहते थे कि हिंदी आम आदमी की भाषा बने। 18 जनवरी 2003 के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी कवियों में शायद वही अकेले कवि थे जिन्होंने लगभग पूरी शताब्दी देखी और वही शायद अकेले कवि हैं जिन्होंने अंतःकरण के सोत्र को शुष्क होता महसूस किया तो कविता का जाल समेट लिया। वो आधुनिक हिंदी कविता के शलाखा पुरुष कहे जा सकते हैं जिन्होंने बड़ी आसानी से साहित्य में छायावाद रहस्यवाद के बीच हालावाद को लाके बिठा दिया जो शायद उस दौर में साथी कवियों के फैले प्रभाव क्षेत्र में एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन उनकी कल्पनाशीलता मस्ती और भावुकता की सरसता ने ये काम आसान कर दिया। यूं उनकी सभी रचनाओं में अधिकतर अपना जीवन ही दिखाई देता है लेकिन स्वभाव से अंतर्मुखी होते हुए भी बच्चन की रचनाएं आम आदमी की पीड़ा को स्वर देती हैं जिसे बड़े पैमाने पर सुना और सराहा गया। बच्चन जी ने हिंदी साहित्य का जैसे अनमोल मणियों से श्रृंगार किया। भाषा शैली और संदेश के माध्यम से हिंदी साहित्य को नए आकाश दिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।